ओम शांति। किसी एक राज्य का एक संविधान था कि जो भी राजा आएगा वो केवल और केवल 5 वर्ष तक राज्य कर सकेगा। उन 5 वर्षों में उसे जो करना है, जैसे जीना है, जैसे शासन करना है वो कर सकता था, पर जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए, राज्य के बाहर जो नदी थी, एक नाविक उस राजा को बिठाकर उस नदी पार कराकर एक जंगल में छोड़ा था, और वो जंगल बहुत घना था और उस जंगल में बहुत जंगली जानवर थे, खौफनाक। उस राज्य में पहला राजा आया और जब उसने ये संविधान सुना, सारा समय भोग विलास ऐशो आराम की जिंदगी में लगा दिया, और देखते देखते कब 5 वर्ष पूरे हो गए पता ही नहीं चला, और जब 5 वर्ष पूरे हो गए तो रोने लगा, क्योंकि अब नाव में जब बिठाया गया और उन घने जंगलों में उसे छोड़ दिया गया जहां साक्षात मृत्यु सामने, दूसरा राजा आया। पहले राजा का अनुभव उसने सुना था और उसके 5 वर्ष इसी चिंता में बीत गए कि मेरा भी क्या होगा, ऐसे ही होगा शायद जैसे उसका हुआ था। चिंता ग्रस्त रहकर रोगी हो गया, सोचते 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 क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ना तो भोग कर सका और ना ही योग, रोग में और चिंताओं में जीवन व्यतीत हो गया। 5 वर्ष पूरे हुए, रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा, और नाविक ने उसे उस ओर छोड़ दिया जहां पर साक्षात मृत्यु थी। तीसरा आया राजा, उसने सोचा मुझे कुछ सीखना चाहिए मेरे पहले वाले राजा से। उसने सोचा कि क्यों ना मैं आधा समय जो कुछ करना है, ऐश आराम, खाना पीना, वो करूं, और शायद फिर जो आधा समय उसमें सोचूंगा या चिंता करूंगा क्या करना है। और ऐसे ही होता है, आधा समय तो भोग विलास और फिर आधा समय सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और ऐसे करते करते 5 साल पूरे हो गए। चौथा राजा आया जो कि सबसे बुद्धिमान था, और उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की, राजतिक सुख भी भोगा, न्याय भी किया, प्रजा की पालना की, बहुत प्यार से सबको रखा, और जब 5 वर्ष पूरे हुए तो प्रजा ने कहा नहीं नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे, आप यही रह जाओ, पर राजा ने कहा संविधान सबके लिए समान है, मुझे भी जाना ही होगा, और राजा भी उस नाव में जाकर बैठा और वो नाविक राजा को लेके जाने लगा। नाविक पूछता है आप इतने खुश कैसे, क्योंकि अब तक जिन जिन राजाओं को मैं लेके गया वो सब रो रहे थे और सब दुखी थे। राजा ने कहा मैं जब राज्य कर रहा था उसी समय मैंने वो जो जंगल था उसकी सफाई कराई, और वो जो जंगल था वहां एक दूसरा राज्य स्थापित कर दिया है, एक बहुत बड़ा महल, इसलिए मुझे अब कोई दुख नहीं है। ये 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले वो लोग जिनका सारा जीवन इच्छा, तृष्णा, वासना, भोग विलास में डूबा रहता है, और जीवन का अंत जब आता है, जार जार आंसू बहाते हैं, क्योंकि जो करना था वो किया ही नहीं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो सारा समय क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बाबा ने कहा माया की मेहमानी, ऐसा वैसा ये क्यों वो क्यों। एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि मनुष्य की चिंता 40% जो है, जो भी वो सोचता है उसमें 40% उस चीज के लिए सोचता है जो चिंता का कोई कारण ही नहीं, पर सोच सोच के उसे चिंता वो बना देता है वरी। 30% वो उन चीजों के लिए सोचता है जो कि अतीत की है, पास्ट की, जो हो गई, जिसका भी कुछ किया नहीं जा सकता है। बारह परसेंट वो सोचता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया, आरोप लगाए, क्रिटिसिज्म किया, शायद ईर्ष्यावश, और वो भी झूठा है, उसकी चिंता करता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। 10% वो चिंता करता है अपने शरीर की बीमारी की, ये बीमारी मुझे क्यों हुई, और वो शरीर की बीमारी की चिंता करते करते वो बीमारी चिंता से और बढ़ती है। और केवल 8% ऐसा है जो चिंता के लायक है, जो सही में प्रॉब्लम है, पर वो भी चिंता करके मिटने वाला नहीं है। तो ये वरी का स्टैटिस्टिक्स है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, उदास होते रहता है, दुखी होते रहता है। जैसे एक पति पत्नी किसी संबंधी के यहां मिलने के लिए जाने लगे, और जाते जाते पत्नी को ख्याल आए कि बीच में एक पुल है, और वो पुल तो बहुत पुराना है, बहुत जर्जर है, और मैंने सुना है वो बस टूटने ही वाला है। पति कहता है हाँ मैंने भी सुना है, और उसी पुल से हमको गुजरना है, हो सकता है हम दोनों ही गिर पड़े और दोनों मर जाए। पत्नी कहती है ये भी हो सकता है कि आप ही गिर पड़ो, आपका पैर टूट जाए, फिर मैं और मेरी बेटी अकेले हम क्या करेंगे, हमारा तो दुनिया में आपके सिवा कोई है ही नहीं। वो कहता है हाँ मेरा अगर पैर अगर टूट जाए तो मैं आगे क्या करूंगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बॉस तो मुझे निकाल देंगे और मुझे तो दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो पूरा समय सोचते सोचते बातें करते करते पुल तक पहुंचते और देखते हैं नया पुल, उन्हें पता ही नहीं कि ये पुल अब सरकार ने नया बना दिया है, उन्होंने जब देखा था वो पुराना था। और पूरा समय सोचने में, अनुमान लगाने में बीत गया। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, ये दूसरा राजा। तीसरा राजा है जो सोचता है, तीसरे प्रकार के व्यक्ति है जो सोचते हैं पहले भोग फिर योग, पर यह गणित ही गलत है, क्योंकि भोग के बाद योग नहीं रोग आता है। भोग इतने सस्ते भी तो नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है, भोग रोग और फिर वियोग। वो सोचता है भोग पहले, बाद में ईश्वर चिंतन, बाद में पुरुषार्थ, बाद में देखेंगे सब कुछ अध्यात्म। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति है संसार में। और चौथे प्रकार के वो बुद्धिमान लोग हैं जो यहां रहते ही क्या करते हैं, वहां की सोचते हैं, जो यहां रहते ही वहां पर अपना राज्य स्थापित करते हैं, जो यहां रहते ही अपना भविष्य, अपना भावी, उसकी प्लानिंग यही बैठकर करते हैं, पल पल सफल करते हैं। यहां भी खुश और वहां भी खुश, यहां भी राजा और वहां भी राजा, यहां भी स्वराज्य अधिकारी वहां विश्व राज्य अधिकारी, यहां भी स्वर्ग में और वहां भी स्वर्ग में, यहां भी अमूल्य रतन और वहां भी सर्वश्रेष्ठ। भक्त प्यार करेंगे, पवित्रता का गायन करेंगे, संभाल करेंगे। हम कहां पर हैं? चारों में से हम कौन हैं? पहले भोग विलास में डूबे हुए पुरुषार्थ केवल नाम मात्र है, सारा ध्यान कहीं और है। इंद्रियों की तृप्ति में चेतना लगी हुई है और ये इंद्रिया कभी भी तृप्त नहीं होती, उत्तेजित होती है फिर ठंडी होती है, फिर उत्तेजित होती है फिर ठंडी होती है। तृप्त कहां होती है, क्योंकि विषय सुखों में तृप्ति है ही नहीं, तृप्ति त्याग में है। तेन तत्वेन भुग्निता, इस संसार के भोग और विलास कैसे भोगो इनका त्याग कर कर, विरोधाभासी वाक्य है। तेन तत्वेन भुग्निता, महात्मा गांधी ने कई बार इस वाक्य का प्रयोग किया है, इस संस्कृत के शब्द का। चिंताओं में जीवन बीत रहा है, क्या हम कर रहे हैं या फिर पल पल सफल हो रहा है। यहां बैठे ही वहां की सोच चल रही है, ये सोचना कि मृत्यु सामने खड़ी है, क्या यह निगेटिव थिंकिंग है? कई लोग सोचते हैं यह निगेटिव है ना, जैसे कोई कंपनी है और उन्हें टारगेट दिया जाता है, डेडलाइन इस तारीख तक ये पूरा हो जाना चाहिए, उसी तरह ये भी है कि ये जीवन नश्वर है, बहुत कम समय बाकी है, ये किसी को बताने की बात नहीं है, स्वचिंतन स्वपुरुषार्थ की बात है, जो हम अपने आप को ही समझा है कि मेरे पास समय बहुत कम है और कम समय में बहुत कुछ करना है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी किसने किसको देखा, कौन देख रहा है किसको, रत्नाकर बाप किसको देख रहा है, कौन से रत्नों को देख रहा है, अमूल्य रत्नों को देख रहा है, अलौकिक रत्नों को देख रहा है, सर्वश्रेष्ठ रत्नों को देख रहा है, नवरत्नों को देख रहा है। और उसने क्या देखा, संसार में नवरत्नों का गायन है। बाबा ने कहा तुम एक एक रत्न हो, और रत्न हो तो रत्नों से खेलो। बाप को भी आश्चर्य होता है, बाप को भी हंसी आती है जब रत्न मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। मिट्टी धरती की है, मैले हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं पुकारते हैं साफ करो, घबराते हैं, खेलते ही क्यों हो, शरीर मिट्टी है, तपस्या के लिए, भोगों में डुबाने के लिए नहीं। तो संसार में नवरत्नों का गायन है, हम नौ बातों की चर्चा करेंगे जो समान भगवान ने हमें दिया। आज मुरली ओम शांति भवन में चली है, बाबा कह रहे ये दरबार है, क्या है ये, अमूल्य रत्नों का दरबार। कितना सुंदर दृश्य है, जो ओम शांति भवन क्या है, एक दरबार है जिसमें एक एक रत्न बैठा है। 85 की मुरली है। तो सबसे पहली बात, तुम कैसे अमूल्य रत्न हो, सारी दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा वाक्य है बाबा का, सारी दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, सारे खजाने, सारे रत्न एक तरफ और तुम में से कितने, एक इधर, फिर भी ये उन पर भारी है। सारी दुनिया एक तरफ और एक रत्न एक तरफ, इतनी हमारी वैल्यू है। अपनी वैल्यू को कम ना करो, कम ना समझो। और वैल्यू क्यों है, इसका भी आगे मुरली में कारण बताया है, क्योंकि बाप साथ है इसलिए। इसको भूलना नहीं, इस विधि को नहीं भूलना, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी, ये भी नहीं कि मैं ही सब कुछ हूं और ये भी नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूं. सुपीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी नहीं. साथ भगवान है, ये भाव. अपनी वैल्यू को कम ना करो. तो सबसे पहली बात, नौ बातों में, हम कौन है? वो रत्न है जिनके सामने दुनिया का सारा ऐश्वर्य फीका है, दुनिया के सारे खजाने गौन है. अपने ही मूल्य को समझना है. और भगवान इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है, फिर भी कई बार हम अपने आप को ही भूले रहते हैं, अपने ही महत्व को हम भूल जाते हैं और दुखी और उदास हो जाते हैं. और उदासी ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति अगर उदास हो तो वो संक्रामक है उदासी. जैसे एक व्यक्ति, एक युवक एक पुल के पास खड़ा हो गया और नीचे नदी बह रही है, बहुत ऊंचा पुल, अब कूदने की फिराक में है. एक पुलिस वाला उसको देख लेता है, क्या कर रहे हो, कहां कूद रहे हो, क्यों अंधेरे में यहां खड़े हो? वो कहता है, मेरी पत्नी थी मर गई, मेरी बेटी थी भाग गई, जॉब था उसमें पार्टनर ने धोखा दे दिया, देवाला निकल गया, मित्रों ने धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है. और थोड़ी देर के बाद वो और पुलिस वाला दोनों ही कूद जाते, क्योंकि उदासी, विषाद, दुख संक्रामक है, वो भी नहीं सहन कर पाता. जैसे खुशी संक्रामक है, जैसे हंसी संक्रामक है, उसी तरह दुख भी संक्रामक है, उबासी भी संक्रामक है. एक को नींद आ रही है तो धीरे धीरे नींद की लहर फैलती है सभा में और योग कक्ष में. इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ये संसार प्रकंपन का एक समुद्र है. सब कुछ प्रकंपित, सब वाइब्रेशन है. जो लहरें मेरे मन में उठ रही है वो जा रही है, कुछ ना कुछ निर्माण कर रही है. विचारों की तरंगे है, हर मन से विचारों की तरंगे उठ रही है, एक तरंग दूसरी तरंग को छू रही है. और जिन जिन से हम जुड़े हैं उनकी तरंगे हमें ज्यादा छूती है और प्रभावित करती है और हमारे सुख और दुख का कारण है. और इस संसार में वर्तमान में निगेटिव तरंगे ज्यादा है, इसलिए तो वो अंगूठी पहनते हैं. जो ग्रह है नवग्रह, उनका कुप्रभाव ना हो इसलिए. तो सबसे पहली बात, हमारा महत्व वैल्यू. दूसरा, ये अमूल्य रत्न कब पाए जाते हैं, किस सीजन में मिलते हैं? केवल और केवल संगम युग पर, और किसी युग में नहीं मिलते. केवल और केवल संगम युग पर. बड़ी ही दुर्लभ प्रजाति है, एक एक जो एकत्रित हुआ है बहुत दुर्लभ है. तीसरी बात, सतयुगी देवताओं का भी जो पार्ट है वो यहां के जो ईश्वरीय संतान अमूल्य रत्न है उससे वो पार्ट सेकंड नंबर पर है, ये फर्स्ट पर है. अर्थात देवताओं से भी ज्यादा सुखी हम हैं. है या नहीं? या दुखी है? पुरुषार्थ का गम हो नहीं, होता नहीं है. जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता है. समझता सब कुछ है, ऐसी कोई पॉइंट नहीं है ज्ञान की जो हमें पता नहीं, परंतु बावजूद भी नहीं होता. दुर्योधन कहता है, धर्म क्या है मुझे पता है पर मैं कर नहीं सकता. शक्ति नहीं है। अधर्म क्या है मुझे पता है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। हे गोविंद, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे सब पता है मैंने जो कुछ किया अधर्म था, पर धर्म पर चलने की पावर नहीं है। श्रीमत क्या है, ऐसा शायद ही कोई ब्राह्मण होगा जिसे पता नहीं, फिर भी तो भूलते हैं। कल परसों मुरली थी, श्रीमत भूले और गिरा। तो सतयुग के जो देवता है, जो संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जहां सतो प्रधानता है, जहां डबल अहिंसक है, निर्विकारी है, सर्व गुणों से संपन्न है, 16 कलाओं से युक्त है, आत्मविमानी है, और उस वैभवशाली उस सतो प्रधान साम्राज्य में वो जीते हैं, बाबा कह रहे तुम उनसे भी अधिक सुखी हो। क्यों? तुम्हें भगवान मिला है, उन्हें भगवान नहीं मिला। परम धाम में भी हम भगवान के समीप है, परंतु वहां और यहां अंतर है। वहां संपर्क है, यहां संबंध है। परम धाम में भी आत्माएं भगवान के निकट है, परंतु केवल संपर्क है, संबंध नहीं है। किसी संबंध का अनुभव वहां नहीं है, अनुभव यहां है। तो हमने कितना अनुभव किया है और कितनी बार किया है, कहां कहां किया है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्यों उसमें और हम में अब भी इतनी दूरी है। कुछ होता है तो क्या सबसे पहले भगवान की याद आती है या और किसी और की? तो तीसरी बात, सतयुग के जो देवता है उनसे भी हम श्रेष्ठ है। चौथा, जैसे ईश्वर की महिमा है, जैसे ईश्वर का नाम है, जैसे उसके कर्म है और जैसे उसका जन्म श्रेष्ठ है, वैसे हमारा भी सब कुछ श्रेष्ठ है। गीता में है, जन्म कर्म च दिव्य च। हे अर्जुन, मेरा जन्म मनुष्यों के सदृश नहीं है, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। अवजानंती माम मूढ़ा, मैं जब मनुष्य तन का आधार लेकर जन्म लेता हूं, मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। अवजानंती, जानते नहीं है वो मुझे, मेरे ऐश्वर्य को जानते नहीं, मेरे रूप को जानते नहीं। मया तद्मिदम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्वस्थित। कोई मुझे नहीं जानता। तो चौथी बात, उसके बाद में पांचवा, तुम्हारा गायन भक्ति मार्ग में कैसा है? नवरत्नों के रूप में है। नवरत्नों की अंगूठी सबने पहनी है, देख लो एक बार। क्लास के बाद मिल जाएगी। नवरत्न वो जब पहनते हैं तो क्या होता है? विघ्न विनाशक, सारी बाधाएं टल जाती है, भूत प्रेत। कौन कौन से है नवरत्न? किसी को पता है? डायमंड, एमराल्ड, कोरल, हेसोनाइट, इंग्लिश में नाम है ये सारे, हिंदी में बड़े कठिन नाम है। ब्लू सेफायर, नील मणि, येलो सेफायर, क्रिसबेल करके आता है एक, रूबी और पर्ल, ऐसे नौ है। हिंदी के नाम देख लेना। तो इनका बड़ा महत्व है, गायन है, बहुत सोच समझ के पहनना होता है, पर क्योंकि इनके बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो बाबा ने कहा तुम एक एक कौन हो? नवरत्नों में के रूप में तुम्हारा गायन है, ये पांचवी बात। छठवी, चाहे तुम अपने आप को बाप के योग्य समझो या न समझो, बाप ने तुम्हें स्वीकार किया और क्या कहा? तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, ये बाबा ने कहा, हमें स्वीकार किया। कई बार शायद हम ये सोचते हैं कि शायद ये सब जो मुझे मिल रहा है मैं इसके योग्य नहीं, पर भगवान कह रहा है कि मैंने तुमको चुना है क्योंकि तुम योग्य थे। भक्त समान रखेंगे, बाबा ने कहा, यादगार के रूप में पूजे जाओगे। ये छठवीं पॉइंट। सातवीं पॉइंट थोड़ा सा लंबा है। तुमको क्या मिली? ईश्वरीय दृष्टि। जैसे ही भगवान की दृष्टि तुम पर पड़ी, क्या हो गया? गीत में सुना, मिट्टी से क्या बन गया? हीरा। भगवान की दृष्टि पड़ी, क्या प्रभाव था उस दृष्टि का, क्या थे और क्या बन गए? बाबा ने कहा तीन बातें हो गई, जब भगवान की दृष्टि तुम पर पड़ी, जब स्नेह के सागर की दृष्टि तुम पर पड़ी, अविनाशी स्नेह के सागर की अविनाशी दृष्टि तुम पर पड़ी, तो तीन चीजें हुई। सबसे पहले प्यार, दूसरा पवित्रता, और तीसरी बात संभाल। भक्तों ने क्या क्या किया? तुमको बहुत प्यार दिया, प्यार से रखते, प्यार से पूछते, प्यार से देखते, सब कुछ प्यार से करते। जैसे ही भगवान की अभी तुम पर दृष्टि पड़ी, तो द्वापर से तुम नजर से निहाल करोगे आत्माओं को। तो रोज अमृत वेला बाबा की दृष्टि को आंखों में भर लेना है, समा लेना है, क्योंकि जिस पर हम फोकस करेंगे उसके गुण हम में आते रहेंगे। जो जिससे प्यार करता है वो उसके जैसा बनने लगता है, उसकी आदतें इधर ट्रांसफर होने लगती है, जो उसको अच्छा लगता है वो इसको भी अच्छा लगता है। और जहां पर आंखें जाती है, wherever vision goes energy flows, जहां हम देखते हैं, घड़ी को देखा एनर्जी वहां गई, वस्तुओं को देखा एनर्जी वहां गई, सारे दिन भर आंखें क्या क्या देख रही है, जो कुछ देख रही है वो सब कुछ प्रभावित कर रही है चेतना को, हर चीज। तो क्या करना है? दृष्टि को कैच करना है, भरना है। बाप से दृष्टि लो और सृष्टि को दृष्टि दो। इधर से लेना, इधर देना, ये पहला काम। दूसरा पवित्रता। पवित्रता जन्मसिद्ध अधिकार, पवित्रता स्वधर्म, और इसलिए भक्त भी, तुम्हारा आधा कल्प तो पवित्रता का गायन है, पूजे जाओगे, आधा कल्प पवित्रता से रखेंगे। पवित्रता से पलते, पवित्रता से पूजे जाते, पवित्रता से ही तुम्हारा जन्म है, आधा कल्प। और एक जगह मुरली में बाबा ने कहा है, जो अमूल्य रत्न होंगे उनको दिल से आकर्षण होगा। किसका? पवित्रता का, प्यूरिटी का सहज आकर्षण, प्यूरिटी का दिल से आकर्षण। जरा सी भी अपवित्रता आई तो बेचैनी होते, क्यों आई? दुख होता है। जरा सा भी देह की तरफ ध्यान गया, एक योगी पश्चाताप करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, मन में यह सोचता है। बाकी सब चीजों में ठीक, माफ किया जाएगा, इसमें नहीं। तो दूसरा पवित्रता, और तीसरा संभाल, लव रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया जाएगा, महान समझा जाएगा। तो भगवान की दृष्टि जिन पर अब पड़ती है उनके साथ ये तीन बातें होगी। प्यार यहां से लिया, वहां से प्यार मिलेगा। द्वापर से भी जो भी संबंध होंगे वो प्रेममय संबंध होंगे, किसी से वैर विरोध नफरत लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि अपने आप को प्यार से अभी भरा, आत्माओं से प्यार मिलेगा। अपने आप को पवित्रता से अभी भरा, वहां से जन्म भी सतयुग त्रेता में पवित्र, और द्वापर से भी जो संबंध होंगे वो भी बहुत शुद्ध और पवित्र होंगे। संभाल, यहां पर भगवान ने सवाल की, यहां पर भगवान ने हमारी मात पिता बनकर अविनाशी पालना की, वहां अपने आप पालना होगी। तो परमात्मा दृष्टि से ये सब बातें हो जाती है। ये सातवा, आठवा अक्षोहिनी सेना, वास्तविक शब्द है अक्षोहिनी। एक अक्षोहिनी अर्थात 218,700 सैनिक, एक अक्षोहिनी अर्थात 218,700। महाभारत में 18 अक्षोहिनी थी, पांडवों की 7 और कौरवों के 11। वो कैलकुलेट करते बैठो कितने निकलेंगे, 3,00,000 के ऊपर निकलेगा। और वो कहा जाता है सब कहा था कुरुक्षेत्र में, इतनी सेना एकत्र हुई थी। तो बाबा ने कहा ये सारी अक्षोहिनी सेना एक तरफ, तुम इनसे भी पावरफुल हो तुम इनसे भी अधिक शक्तिशाली हो, परंतु तुम शक्तिशाली तब हो जब बाप तुम्हारे साथ है। ये विधि है, इसी से सिद्धि है। बाप को ना भूलना, बाप को साथ रखोगे तो शक्तिशाली हो, तो अमूल्य हो, तो अक्षोहिनी सेना से अधिक पावरफुल हो। और इसमें फिर ये नहीं आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। होलियर देन थाउ एटीट्यूड अहंकार से ग्रसित हो जाता है कि मैं ज्यादा पवित्र हूं, मेरा ब्रह्मचर्य ज्यादा अच्छा है, मेरे पास ज्ञान ज्यादा अच्छा है, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, चिंतन बहुत अच्छा है, ये अहंकार। और उसके विरोध में दूसरा है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सेल्फ विक्टिमाइजेशन, जिसमें व्यक्ति खुद का ही शिकार करता है, उसमें दूसरे का कोई संबंध नहीं है। सेल्फ अर्थात स्व, विक्टिम अर्थात शिकार, और दुखी होते रहता है। और न्यून गंडता, न्यून भावना, अपने को बहुत छोटा समझता, हीन समझता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, ये सब लोग बहुत अच्छा सेवा अच्छी सेवा कर रहे हैं, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं ऐसा क्यों बुद्धि मुझे मिली। हीनता के भाव, इन्फीरियोरिटी के भाव, बाबा ने कहा ये भी नहीं और वो भी नहीं, बाप साथ है ये भाव, तब तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने महत्व को नहीं भूलना है, खुद ही खुद के महत्व को जानना है, अपने भी महत्व को जानना है और सबके महत्व को जानना है। क्योंकि बाप ने कहा यह क्या है, दरबार है, यहां एक एक अमूल्य रतन है, जैसे दिखाया है एक कुम्हार अपने गधे को लेकर जंगल से गुजर रहा था और उसे एक चमकीला सा पत्थर मिला बड़ा। उसने कहा उसने सोचा इसका मैं क्या करूं, तो गधे के गले में लटका दिया और जाने लगा। उधर से एक साहूकार गुजर रहा था, उसने देखा ये क्या है, ऐसा हीरा तो मैंने आज तक देखा नहीं। और वो उस व्यक्ति के पास जाता है, कुम्हार के पास, और बातों बातों में उसे पता चलता है इसे ये पता ही नहीं कि ये हीरा है। और वो कहता है कि इस हीरे के क्या दोगे, इस पत्थर के क्या दोगे। तो वो कुम्हार कहता है 1 रुपया। वो कहता है 1 रुपया 2 आने में दे दो, 3 आने में दे दो। वो कहता है नहीं दूंगा। साहूकार सोचता है थोड़ी देर के बाद लौट के आता हूं, तब तक तो दे ही देगा। वो आगे जाता है, वापस लौट के आते तब तक हीरा तो गायब। वो कहता है कहां गया। वो कहता है दूसरा एक जोहरी आया, उसने 1 रुपये में लेके गए, तुम तो 2 आने की बात कर रहे थे। वो कहता है अरे मूर्ख, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, कैसे मूर्ख निकले जाहिल। कुम्हार कहता है मैं तो आखिर हूं कुम्हार, मुझे तो क्या फर्क, पर तुम तो जोहरी थे ना, तुम्हें तो पहचान थी ना, 1,00,000 का हीरा तुमने 2 आने के लिए गवा दिया, असली मूर्ख तो तुम हो। ब्राह्मण जीवन का महत्व यदि पूछना है तो उन आत्माओं से पूछो जो पहले ब्राह्मण थे और अभी ब्राह्मण जीवन को छोड़ दिया। कुमार जीवन का महत्व यदि पूछना है तो उन कुमारों से पूछो --- कुमारी जीवन का महत्व पूछना है तो उन कुमारियों से पूछो जो पहले तो बहुत पावरफुल कुमारी थी, अभी डैश 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 अभी कुमारियों की संभाल में लगी हुई है। संसार के एक एक घर में झांक कर देखो, दुख है, चिंता है, और हम कहां हैं? इसलिए यदि हम भी दुखी हो तो संसार के लोग और हम में क्या अंतर रहा? ये दोनों चीजें। तो आठवीं पॉइंट, हम कौन हैं? अक्षय और सेना से भी अधिक शक्तिशाली। नवीं बात, पवित्रता। अमूल्य रत्नों का किसके पात्र है? इस पवित्रता के, परमात्मा प्रेम की, परमात्मा पालना के पात्र बने। और यहां पर पवित्रता कैसे आई? सहज आई। और जो अधिकारी है उनको पवित्रता सहज लगेगी, जो अधिकारी नहीं है उनको मुश्किल लगेगी, भागेंगे। पवित्रता सहज लगे ऐसे बच्चों को जैसे ही निश्चय हुआ कहेंगे कि बाप ने पवित्रता अधिकार के रूप में दिया है, हम पवित्र बन कर ही दिखाएंगे। दो तीन दिन पहले मुरली में था, प्रतिज्ञा करो पवित्रता की। ये चोला आसुरी है, ये दुनिया आसुरी है। संपूर्ण पवित्रता की संपूर्ण प्रतिज्ञा। तो पवित्रता जन सिद्ध अधिकार है, पवित्रता स्वधर्म है। और कुछ दिन पहले, कल की ही मुरली में था, सबसे बड़ा श्रृंगार है मीठे बच्चे। पवित्रता सबसे बड़ा श्रृंगार है, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, प्यूरिटी ही ऑनेस्टी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही एबिलिटी है, प्यूरिटी है कैपेबिलिटी, प्यूरिटी ही और क्या है? सिक्योरिटी है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, जेड प्लस। सिंप्लिसिटी है, प्यूरिटी से बड़ा और कुछ नहीं है संसार में। जन सिद्ध अधिकार, बार बार इसको अंदर ही अंदर घोटते रहना है कि पवित्रता मेरा जन सिद्ध अधिकार है, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। और जब जब मैं स्वधर्म से दूर जाऊंगा दुख मिलेगा, क्योंकि वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। और जब जब पवित्रता से दूर गया, अतीत में अनुभव सामने है, क्या मिला? अल्पकाल का सुख, वो भी थोड़ी देर के बाद फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, दुख में परिवर्तित हो गया। ऐसे सुख के पीछे मैं क्यों पागल हूं, जिस सुख ने सुख बहुत कम दुख ही ज्यादा दिया है? वह ऐसा सुख है एडिक्शन क्रिएट करता है, बेचैनी लाता है, हलचल मचाता है मन में। पवित्रता जन सिद्ध अधिकार, पवित्रता स्वधर्म, पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता का आकर्षण। ऐसे बच्चों को क्या होता है? प्यूरिटी का आकर्षण होता है। तो ये थी नौवीं बात। तो ऐसी नौ बातें मुरलियों में, मुरली में आई है। उसके बाद है माया आए तो क्या करो, क्या करना चाहिए? माया आने के बाद चिंता करते रहना चाहिए, क्यों आई क्यों आई क्यों आई? जैसे दो व्यक्ति थे बूढ़े, और दोनों मिलकर इतनी चिंता करते थे, इतनी चिंता करते थे, इतनी चिंता करते थे। कहीं उन्होंने पढ़ा कि चिंता बहुत नुकसानकारक है, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा हम कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए जिसको सैलरी देंगे, हमारी चिंता वो करे। इश्तिहार देते हैं अखबार में, एक नवयुवक आता है, वो कहता है मैं तैयार हूं, आप सबकी चिंता मैं करूंगा, आप लोग नहीं करना, पर सैलरी मुझे मिलनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, एक हफ्ते के 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वो कहता है इतनी कम सैलरी, मैं आपकी चिंता तो बाद में करूंगा, मुझे तो कम सैलरी है इसकी चिंता मुझे होती रहेगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा ये जॉब। फिर वो कहते हैं, सोचते हैं दोनों बूढ़े लोग क्या किया जाए, कहता है चलो इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। और वो उससे फिर मिलते हैं, कहते हैं ठीक है 10,000 रुपए एक हफ्ता के देंगे। वो कहता है 10,000, अगर जब मुझे इतने पैसे मिल जाए तो मैं चिंता की करने की नौकरी क्यों करूं? क्योंकि नौकरी क्या है? चिंता करना। तो जब मुझे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो मैं चिंता कैसे करूंगा? तो बाबा ने कहा माया आती है, विघ्न आता है। तो बच्चे क्या कहते हैं, क्यों आई, कहां से आई, यहां से आई, वहां से आई, हरी है, पीली है कि नीली है? माया पर, परिस्थिति पर पीएचडी करने में लग जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बात की गहराई में नहीं जाओ। किसकी गहराई में जाओ? ज्ञान की गहराई में जाओ। और क्या सोचो, किस लिए आई है ये? सिखाने के लिए। किस लिए आई है ये? क्लास आगे बढ़ाने के लिए। किस लिए आई है ये परिस्थिति? अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए परिस्थितियां तो आनी चाहिए, नहीं तो अनुभवी कैसे बनेंगे? और जब तक व्यक्ति खुद हाथ डालकर आग नहीं लगती कई बार, तब तक सीखता ही नहीं। हाँ, वो दूसरे लोग हैं जो दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं, वो तो महाबुद्धिमान है, जिन्होंने हाथ डाला ही नहीं और सीख लिया। तीन प्रकार के व्यक्ति है संसार में। एक वो जो खुद के अनुभव से सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, और तीसरे वो जो दोनों के अनुभव से सीखते हैं। देखा दूसरा गिर गया, सीखा। अब खुद करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए साक्षी होकर इस यज्ञ को भी देखना है, साक्षी होकर यहां के हर ब्राह्मण के पुरुषार्थ को भी देखना है। अगर कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ पहले करता था, अभी पुरुषार्थ ठप हो गया है, उसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं, कारण ढूंढना है साक्षी होकर कि क्या हुआ। अवगुण जब दिखाई दे तो आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, ना ही उसका वर्णन करने की, परंतु सीखना है कि इसका पुरुषार्थ नील हो गया, कारण क्या रहा? मेरे भी अंदर भी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, मैं भी उसी कश्ती में सवार तो नहीं? अपनी सूक्ष्म चेकिंग। तो माया आए तो मेहमानी नहीं करना, माया आए तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां नहीं करना। माया आए तो बाबा ने उदाहरण दिया है, घबरा जाते हैं किससे? चींटी से। और रास्ते में कोई खराब वस्तु दिखी तो क्या करते हो? किसने ये फेंकी, कौन है ये, रिसर्च करते बैठते हो? बहुत खराब है, लोग कहां रखते हैं, क्यों फेंकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा ये टाइम वेस्ट, किनारा करके निकल जाओ। इस दुनिया के ठेकेदार बनने का काम बंद। मैनेजमेंट इस यूनिवर्स का मैनेजर बनने की पोस्ट से रिजिग्नेशन लेटर दे देना है। हम इस यूनिवर्स के रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स एंड यू विल हैव पीस। हर चीज ऐसी क्यों हो रही है, वैसी क्यों हो रही है, ऐसा यहां पर भी ऐसा होता है, ये लोग भी ऐसा करते हैं। तुमको ठेकेदार बनाया किसने? बाप कहते ठेकेदार मैं हूं, तुम नहीं, मैं सोचूंगा दुनिया क्या क्या करना है, का क्या करना है। मददगार है तो मददगार ही रहो, बाप के बाप बनने की कोशिश नहीं करना है। बाबा के बाबा बन जाते हैं, चार दिन पहले मुरलियों में था थर्ड क्लास ट्रेटर, ऐसे भी है। तो माया आ जाए, क्या करना है, सीखो। अनुभवी बनाने आई, क्लास आगे बढ़ाने आई, मास्टर सर्वशक्तिवान का सर्टिफिकेट देने आई। तुम क्या बन, तुम्हारी पोजीशन क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिवेणी और त्रिकालदर्शी हो तुम। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? ये सब होगा, मन को समझा देना है, ये सब होगा। जो तैयार नहीं होता है उसको भय लगता है, जिसे पहले ही पता है ये सब होने वाला है उसको भय थोड़ा कम होता है। विरोध होगा, निंदा होगी, ग्लानी होगी। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा किसी ने, हमको थोड़ी छोड़ेंगे, सब कुछ होगा। इसलिए तैयार रखना है मन को, और यहां रहते जब से वो चौथा राजा था वहां की तैयारी करनी है, वहां के राज्य की स्थापना यहीं पर मन में करनी है। तो यहां पर बाबा ने माया के बारे में कुछ बातें कही और लास्ट में फिर से वही बात की, अपने महत्व को समझो, अपने महत्व को भूलना नहीं है। हम बहुत महान आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, अमूल्य आत्मा है, जिनका कोई मूल्य आका नहीं जा सकता, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। अपने महत्व को खुद ही ध्यान में रखकर खुद ही ऊंची स्थिति में रहना है और खुद ही खुद को दुखी नहीं बनाना है अपने ही संकल्पों से। बाबा ने और एक बात कही, माया किस रूप में आती है? संकल्प और स्वप्न। शास्त्र है ज्ञान, शस्त्र है ज्ञान, उसका प्रयोग करो तो उस संकल्प को नष्ट कर दो। संकल्प के लेवल पर काम करना है, थॉट क्राइम्स जो हो रहे हैं, ताकि वो कर्म तक ना आए। ऐसे कैसे? अमूल्य रत्नों को, ऐसे प्रभु प्रेम के पात्र आत्माओं को, ऐसे परमात्मा पालना के पात्र आत्माओं को, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे त्रिवेणी आत्माओं को, ऐसे नवरत्नों को, ऐसे ऐसे तू मेरा मैं तेरा, ये भगवान ने कहा, ऐसे 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 भगवान की दृष्टि जिन पर पड़ी और वो परिवर्तित हो गए, जिनको प्यार मिला, पवित्रता मिली, संभाल मिली, ऐसी आत्माओं को, ऐसे कितनी अक्षय योनि सेना एक तरफ और उनसे भी अधिक शक्तिशाली आत्माओं को, ऐसे संसार की सारी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा मूल्यवान आत्माओं को, ऐसे देवताओं से भी, देवता है नंबर टू, और देवताओं से भी ऊंची आत्माओं को, ऐसे पूज्य आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को। तो एक ही मुरली में ढेर सारे समान हैं, एक ही मुरली में बहुत सारे चिंतन बिंदु हैं, एक ही मुरली में कितनी सारी रिसर्च की पॉइंट्स है, नवरत्न क्या होते हैं, उनका महत्व क्या है, अक्षय योनि सेना क्या है और वो कैसे बनती है, उसके साथ तुलना की, एक ही मुरली में इतने सारी बिंदु, इतने सारी पॉइंट्स है, और पवित्रता की जो बातें इस मुरली में आई है कितनी श्रेष्ठ है। तुम पात्र बने हो परमात्मा प्रेम के और इस पवित्रता के, पवित्रता से तुम्हारा जन्म होगा, पवित्रता तुम्हारी पूजी जाएगी, पवित्रता का आकर्षण कैसे बढ़ाए। आप सबको एक काम दे रहे होमवर्क, प्यूरिटी का आकर्षण कैसे बढ़े, सारे दिन भर इस पर चिंतन करके 21 पॉइंट्स लिखनी है कि प्यूरिटी का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कैसे बढ़े, क्या मैं करूं? जो अब प्यूरिटी है उसकी ग्रेड, उसकी लेवल, उसका ग्राफ बढ़ जाए, क्योंकि जितनी आत्मा प्योर होगी उतनी भगवान से उसको ज्यादा आकर्षण होगा। तो ऐसी पवित्र आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अमूल्य आत्माओं को, अलौकिक आत्माओं को, नवरत्नों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।